एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में फिर से स्वागत। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
ये किताब शायद खुशी को लेकर जो हमारी आम समझ है ना, उसे थोड़ा बदल सकती है।
बिल्कुल।
किताब का नाम है ऑथेंटिक हैप्पीनेस,
सच्ची प्रामाणिक खुशी,
और इसके लेखक हैं मार्टिन सेलिगमैन।
और देखिए, ये विषय आज के जमाने में कितना जरूरी हो गया है ना?
हाँ बिल्कुल।
हर कोई कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ रहा है, पर सवाल ये है कि ये है क्या असल में? क्या ये बस मजा है या कुछ और गहरा?
सही।
ये किताब इसी सवाल का एक साइंटिफिक नजरिए से जवाब देने की कोशिश करती है।
हाँ, ये सिर्फ अच्छा फील करने से काफी आगे की बात है। ये किताब पूछती है कि क्या हम अपनी खुशी का जो लेवल है उसे परमानेंटली बढ़ा सकते हैं।
और कैसे?
हाँ, और कैसे? ये उन सतही खुशियों से हटकर जो आती जाती रहती हैं, एक सच्ची गहरी संतुष्टि पाने का रास्ता दिखाती है।
एक तरह का नक्शा,
हाँ कह सकते हैं। तो चलिए पहले इस नक्शे को बनाने वाले के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मार्टिन सेलिगमैन।
हाँ, मार्टिन सेलिगमैन ये कोई ऐसे ही मनोवैज्ञानिक नहीं है। इन्हें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी जो सकारात्मक मनोविज्ञान है उसका आप कह सकती हैं जनक माना जाता है।
सही बात है। अमेरिका के बहुत माने हुए मनोवैज्ञानिक, प्रोफेसर, लेखक, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पीएचडी की और फिर काफी लंबे समय तक वहीं पढ़ाया भी।
और एक दिलचस्प बात यह है कि 1999 में जब वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए के अध्यक्ष बने ना,
हाँ
तो उन्होंने ऑफिशियल तौर पर पॉजिटिव साइकोलॉजी को एक जरूरी फील्ड के तौर पर लॉन्च किया। एक तरह से मनोविज्ञान की दिशा ही मोड़ दी।
कमाल है। और उनका अपना जो सफर रहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
हाँ बिल्कुल।
उनका शुरुआती काम जिसके लिए वो पहले जाने जाते थे वो था सीखी हुई लाचारी पर, लर्न्ड हेल्पलेसनेस,
जिसे कहते हैं, हाँ, वो मानसिक हालत जहाँ इंसान को लगता है कि भाई हालात मेरे काबू में ही नहीं है। बार बार फेल होने के बाद वो कोशिश करना ही छोड़ देता है।
और ये चीज अक्सर डिप्रेशन से जुड़ी होती है।
बिल्कुल।
और सोचिए, जो इंसान लाचारी को, दुख को इतनी गहराई से समझता हो, वही फिर इसके बिल्कुल उलट यानी सीखी हुई आशावादिता या लर्न्ड ऑप्टिमिज्म और इंसान की जो अंदरूनी ताकतें हैं उन पर काम करता है।
यही तो खास बात है।
दशकों तक ये समझा कि दिमाग में क्या गलत हो सकता है और फिर उतनी ही साइंटिफिक सख्ती से ये जानने में लग गए कि दिमाग में क्या सही हो सकता है।
सही। कमजोरी से ताकत की तरफ का ये सफर उनके काम को बहुत विश्वसनीय बनाता है।
बिल्कुल। तो ये किताब ऑथेंटिक हैप्पीनेस सिर्फ एक किताब नहीं है,
गाइड भी, जो अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी, ज्यादा ढूंढ रहे हैं।
और इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? वो आम सोच तोड़ना कि खुशी मतलब बस अच्छे पल, मजेदार पल।
हाँ, वो हेडोनिस्टिक व्यू।
एग्जैक्टली। सेलिगमैन एक ज्यादा ठोस रिसर्च पर आधारित मॉडल देते हैं, बल्कि उन्होंने खुशी का एक फॉर्मूला भी दिया जो काफी फेमस हुआ, H=S+C+V।
हाँ, ये फॉर्मूला तो बहुत डिस्कस होता है। H happiness, खुशी का लेवल। S है हमारा सेट रेंज, हमारी जेनेटिक बनावट जो हमारी खुशी की एक बेसलाइन तय करती है।
हाँ, एक तरह का बायोलॉजिकल थर्मोस्टैट। सेलिगमैन मानते हैं कि ये करीब 50% तक असर डाल सकता है।
लेकिन ये एक रेंज है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं, ये जरूरी बात है।
बिल्कुल। फिर आता है सी यानी सर्कमस्टांसेस,
परिस्थितियाँ, पैसा, सेहत, शादी, सोशल लाइफ, ये सब बाहरी चीजें।
और हैरानी की बात क्या है?
यही कि सेलिगमैन की रिसर्च के हिसाब से इन सब का हमारी खुशी पर कुल मिलाकर सिर्फ 10 से 15% ही असर होता है।
सिर्फ 10-15%? ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है।
हाँ, क्योंकि हम अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियों के बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं।
इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं।
खुशी के पीछे भागते रहो, कुछ मिलता है, आदत पड़ जाती है, फिर और भागो।
और यही पर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, वी,
वॉलंटरी कंट्रोल।
हाँ, ऐच्छिक नियंत्रण। ये वो चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं। हमारे चुनाव, हमारी आदतें, हमारी सोच, वो स्किल्स जो हम डेवलप कर सकते हैं।
और यहीं पर इसी वी में बदलाव की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। किताब का फोकस इसी पर है।
बिल्कुल। सेलिगमैन खुशी के तीन अलग अलग रास्ते बताते हैं, या कह लें तीन स्तंभ।
और वो कहते हैं कि सच्ची खुशी के लिए तीनों जरूरी है, पर खासकर आखिरी दो ज्यादा मायने रखते हैं।
पहला कौन सा है?
पहला है सुखद जीवन, द प्लेजेंट लाइफ। इसमें पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना शामिल है।
जैसे?
जैसे अतीत के लिए शुक्रगुजार होना, माफ करना, वर्तमान का मजा लेना, सेवर करना, और भविष्य के लिए उम्मीद रखना, आशावादी होना।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा है अच्छा जीवन, द गुड लाइफ। ये तब मिलता है जब हम अपनी सबसे खास ताकतों, अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करके किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं, जिसे मिहाई चिकसेंटमिहाई ने फ्लो कहा था।
हाँ, फ्लो, जब आप इतने मगन हो कि समय का पता ही ना चले।
बिल्कुल, यहाँ खुशी सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि उस काम में पूरी तरह शामिल होने में है।
और तीसरा?
तीसरा है सार्थक जीवन, द मीनिंगफुल लाइफ। ये सबसे गहरा लेवल है। ये तब मिलता है जब हम अपनी इन्हीं सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल खुद से बड़े किसी मकसद के लिए करते हैं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए।
तो प्लेजेंट लाइफ, गुड लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ, चलिए इन पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं।
जरूर, शुरुआत करते हैं पॉजिटिव इमोशंस से, जो सुखद जीवन से जुड़ा है।
सेलिंगमैन अपनी बेटी निक्की का वो किस्सा बताते हैं ना?
हाँ, वो बड़ा दिलचस्प है। वो बगीचे में कुछ काम कर रहे थे और निक्की कुछ शरारत कर रही थी। सेलिंगमैन उसे डांटने लगे तो निक्की ने पलट कर कहा कि पापा, आपको याद है मैं 5 साल की उम्र तक कितना रोती धोती थी? मैंने वो बंद कर दिया, और अगर मैं वो कर सकती हूँ तो आप भी इतने चिड़चिड़े होना बंद कर सकते हैं।
वाह, बच्चे भी क्या खूब सिखा जाते हैं कभी कभी।
बिल्कुल, और ऐसी घटना ने सेलिंगमैन को सोचने पर मजबूर किया कि साइकोलॉजी सिर्फ कमियों को ठीक करने पर ही क्यों लगी रहती है, अच्छाइयों को बढ़ाने पर क्यों नहीं।
सही बात है, और यहीं से वो खुशी के फॉर्मूले H=S + C + V में V यानी वॉलंटरी कंट्रोल की बात करते हैं।
हाँ, और वो बताते हैं कि हम अपने पॉजिटिव इमोशंस को अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के हिसाब से बढ़ा सकते हैं।
अतीत के लिए क्या तरीके हैं?
अतीत के लिए दो मुख्य बातें हैं, आभार ग्रैटिट्यूड और क्षमा फॉरगिवनेस। आभार हमें अच्छी यादों को सहेजने में मदद करता है और क्षमा हमें बुरी यादों की कड़वाहट से आजाद करती है।
उन्होंने वो ग्रैटिट्यूड विजिट वाला अभ्यास भी बताया है।
हाँ, किसी ऐसे इंसान को थैंक यू लेटर लिखो जिसने आपकी जिंदगी पर अच्छा असर डाला हो, और फिर पर्सनली जाकर उसे पढ़कर सुनाओ।
सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है शायद।
हाँ, पर कहते हैं इसका असर बहुत गहरा होता है, खुद पर भी और उस इंसान पर भी।
और भविष्य की भावनाओं के लिए?
भविष्य के लिए सबसे जरूरी है आशावाद, ऑप्टिमिज्म, और ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अच्छी और बुरी घटनाओं की वजह क्या मानते हैं।
अच्छा, कैसे?
आशावादी लोग अच्छी घटनाओं को स्थायी मानते हैं और अपनी कोशिशों का नतीजा, और बुरी घटनाओं को अस्थायी और बाहरी वजहों से हुआ मानते हैं।
और निराशावादी इसका उल्टा सोचते हैं?
बिल्कुल, और इस निराशावादी सोच को बदलने के लिए उन्होंने ABCD मॉडल दिया।
ABCDE, ये क्या है?
ए मतलब एडवर्सिटी, कोई मुश्किल। बी मतलब बिलीफ, उस मुश्किल के बारे में आपका विश्वास, आपकी सोच। सी मतलब कॉन्सिक्वेंस, उस सोच का नतीजा, आपकी भावनाएं और व्यवहार।
फिकर।
डी मतलब डिस्प्यूटेशन, अपनी नेगेटिव सोच पर सवाल उठाना, उसे चुनौती देना। और ई मतलब एनर्जाइजेशन, इस चुनौती से जो नई पॉजिटिव एनर्जी मिलती है।
ये तो काफी प्रैक्टिकल टूल लगता है नेगेटिव थिंकिंग से डील करने के लिए।
हाँ बिल्कुल,
और वर्तमान की भावनाओं के लिए सेलिगमैन दो तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स में फर्क करते हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं सुख प्लेजर्स और संतोष ग्रैटिफिकेशंस।
सुख और संतोष, क्या फर्क है?
सुख वो हैं जो हमारे इंद्रियों से जुड़े हैं और क्षणिक होते हैं, जैसे अच्छा खाना खाना, अच्छी कॉफी पीना, संगीत सुनना।
ये जरूरी है, पर इनकी आदत जल्दी पड़ जाती है।
हाँ, और फिर उनका असर कम हो जाता है। दूसरी तरफ है संतोष या परितृप्ति ग्रैटिफिकेशंस। ये उन एक्टिविटीज से मिलती हैं जिनमें हम पूरी तरह खो जाते हैं, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, चुनौती महसूस करते हैं और फ्लो महसूस करते हैं।
अच्छा, जैसे कोई पहेली सुलझाना, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, या कोई खेल खेलना।
बिल्कुल, इनमें मेहनत लगती है, पर इनसे मिलने वाला संतोष ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है। ये आसानी से आदत नहीं बनते,
और यही अच्छे जीवन का आधार है।
एग्जैक्टली, और यहीं से बात आती है किताब के दूसरे बड़े हिस्से पर, शक्तियां और सद्गुण, स्ट्रेंथ्स एंड वर्च्यूज, जो अच्छे जीवन यानी गुड लाइफ से जुड़ा है।
सेलिगमैन का तर्क है कि सिर्फ सुख के पीछे भागना, मतलब प्लेजर्स के पीछे भागना, वो काफी नहीं है, वो खोखला है।
सही, असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपनी सबसे बड़ी व्यक्तिगत ताकतों को, अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं
और फिर उन्हें अपनी जिंदगी के हर पहलू में, काम, प्यार, खेल, हॉबीज में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
और ये पहचानने के लिए उन्होंने अपने साथी क्रिस्टोफर पीटरसन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा काम किया था।
हाँ, VI क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वर्च्यूज, वैल्यूज इन एक्शन।
उन्होंने दुनिया भर की संस्कृतियों, धर्मों, दर्शनों का अध्ययन किया और पाया कि कुछ गुण या सद्गुण
वर्च्यूज
ऐसे हैं जो लगभग हर जगह, हर जमाने में माने जाते हैं।
कितने सद्गुण पहचाने उन्होंने?
उन्होंने 6 मुख्य सद्गुण पहचाने और इन 6 के अंदर 24 चरित्र शक्तियां आती हैं।
अच्छा, वो 6 सद्गुण कौन कौन से हैं?
पहला है ज्ञान और बुद्धिमत्ता, विजडम एंड नॉलेज। इसमें रचनात्मकता, जिज्ञासा, सीखने का प्यार जैसी ताकतें आती हैं।
दूसरा
है साहस, करेज, जैसे बहादुरी, दृढ़ता, ईमानदारी।
तीसरा
मानवता, ह्यूमैनिटी। इसमें प्यार, दया, सामाजिक बुद्धिमत्ता आती है।
चौथा है न्याय,
जस्टिस,
जैसे नागरिकता, निष्पक्षता, लीडरशिप।
पांचवा है संयम, टेम्परेंस, जैसे क्षमा, विनम्रता, आत्मनियंत्रण।
और छठा
है उत्कृष्टता या पारगमन, ट्रांसेंडेंस। इसमें सौंदर्य की सराहना, कृतज्ञता, आशा, हास्य, आध्यात्मिकता जैसी चीजें आती हैं।
तो ये 24 ताकतें हैं जो इन 6 सद्गुणों में बटी हुई हैं।
हाँ, और किताब हमें इनकरेज करती है कि हम ऑनलाइन वाया सर्वे करें और अपनी टॉप 5 सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स पता लगाएं।
ये जानना कि आपकी नेचुरल ताकतें क्या हैं, क्या आप बहुत जिज्ञासु हैं या दयालु या बहुत आशावादी,
और फिर जानबूझकर उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके खोजना। सेलिगमैन कहते हैं यही अच्छे जीवन की कुंजी है।
तो सुखद जीवन हो गया, अच्छा जीवन हो गया। अब तीसरा स्तंभ,
सार्थक जीवन, द मीनिंगफुल लाइफ।
ये तब मिलता है जब हम अपनी इन्हीं सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल
किसी ऐसे मकसद के लिए करते हैं जो हमसे बड़ा हो।
सिर्फ अपनी खुशी या अपने संतोष के लिए नहीं,
नहीं, बल्कि दुनिया में कुछ योगदान देने के लिए, किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ने के लिए।
और सेलिगमैन इसे जिंदगी के अलग अलग एरिया में लागू करके दिखाते हैं।
हाँ, जैसे काम पर। वो कहते हैं काम के प्रति 3 नजरिए हो सकते हैं। या तो वो एक नौकरी है बस पैसे के लिए, या एक करियर है तरक्की और स्टेटस के लिए, या फिर एक कॉलिंग है, ऐसा काम जिसमें आपको अंदरूनी संतुष्टि और मतलब मिलता है।
और कमाल की बात यह है कि कोई भी काम कॉलिंग बन सकता है।
हाँ, अगर हम उसमें अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए कोई अस्पताल में सफाई कर्मचारी है और उसकी एक ताकत है दया, काइंडनेस, तो वो अपने काम को सिर्फ सफाई करना नहीं देख सकता, बल्कि मरीजों की देखभाल और उनके ठीक होने में अपना योगदान देख सकता है।
ये तो नजरिया बदलने वाली बात हो गई।
बिल्कुल। इसी तरह प्यार और रिश्तों में, सफल रिश्तों में हम पार्टनर की कमियों पर ही फोकस नहीं करते,
बल्कि उनकी ताकतों को देखते हैं, सराहते हैं।
हाँ, और साथ मिलकर उन ताकतों को इस्तेमाल करने के मौके बनाते हैं।
और बच्चों की परवरिश में भी यही बात।
हाँ, आजकल पेरेंटिंग में अक्सर बच्चों की कमजोरियों को ठीक करने पर बहुत जोर रहता है। सेलिगमैन कहते हैं कि उनकी जो नेचुरल प्रतिभाएं हैं, उनकी जो ताकतें उभर रही हैं, उन्हें पहचानना और उन्हें सींचना भी उतना ही जरूरी है।
इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रेजिलियंस बढ़ती है।
बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस किताब से कई जरूरी बातें निकल कर आती हैं।
हाँ, क्या है वो मुख्य संदेश?
पहली बात तो यही कि खुशी की परिभाषा मतलब कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सिर्फ मजा या पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, इसमें जुड़ाव, एंगेजमेंट भी है, मतलब अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके किसी काम में रम जाना।
और अर्थ भी है, यानी खुद से बड़े किसी उद्देश्य से जुड़ना।
सुख तो आता जाता है, पर जुड़ाव और अर्थ ज्यादा गहरे और टिकने वाले होते हैं।
दूसरी अहम बात,
दूसरी कि खुशी सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, इसे साइंटिफिक तरीके से समझा जा सकता है, मापा जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है।
ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है।
नहीं, वाया सर्वे जैसे टूल हैं, कृतज्ञता या आशावाद जैसे अभ्यास हैं, ये सब बताते हैं कि खुशी को सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है।
और तीसरी बात जो मुझे बहुत असरदार लगी वो है सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स पर जोर देना।
हाँ, ये बहुत पावरफुल आइडिया है।
हम अक्सर अपनी कमियों को सुधारने में ही लगे रहते हैं, पर यह किताब कहती है कि अपनी ताकतों को पहचानो और जिंदगी को उनके चारों तरफ बनाओ।
ये शायद ज्यादा आसान भी है और ज्यादा संतोषजनक भी, ये सोचना कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ और फिर उसे और करना।
बिल्कुल, ये एक अलग ही नजरिया है।
चौथी बात, वो H=S+C+V फॉर्मूले का V, ऐच्छिक नियंत्रण, वॉलंटरी कंट्रोल।
हाँ, ये बहुत एम्पावरिंग है।
हमारे जीन्स एस और हमारे हालात सी का असर भले ही हो, पर हमारे पास अपनी सोच और अपने कामों के जरिए अपनी खुशी को बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।
मतलब हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन सकते हैं, सिर्फ पैसेंजर नहीं।
एग्जैक्टली। बाहरी चीजों को दोष देने के बजाय अपनी अंदरूनी शक्ति पर ध्यान देना।
और पांचवी बात?
पांचवी बात ये कि सच्चा अर्थ मीनिंग वो सेवा और जुड़ाव से मिलता है। मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचने से नहीं आता। जब हम अपनी बेस्ट ताकतों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई या किसी बड़े लक्ष्य के लिए करते हैं, तब जिंदगी ज्यादा सार्थक लगती है।
ये बात हमारे भारतीय समाज के मूल्यों से भी काफी मिलती जुलती है, परिवार समुदाय सेवा का महत्व।
हाँ बिल्कुल। और किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो इन विचारों को बहुत अच्छे से समेटती हैं।
हाँ, कुछ यादगार पंक्तियां या विचार?
जैसे एक जगह सेलिगमैन कहते हैं, अच्छा जीवन अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का उपयोग करके प्रचुर संतुष्टि प्राप्त करना है, सार्थक जीवन इन्हीं शक्तियों और सद्गुणों का उपयोग खुद से कहीं बड़ी चीज की सेवा में करना है।
ये अच्छे और सार्थक जीवन के बीच का जो कनेक्शन और फर्क है उसे साफ करता है।
महान धन के बीच में आध्यात्मिक रूप से भूखे मर रहे हैं।
वाह, ये तो आज के जमाने पर बहुत सटीक बैठता है।
हाँ, जहाँ हम अक्सर खुशी खरीदने की कोशिश करते हैं, सेलिगमैन याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी कमानी पड़ती है, अपने चरित्र से, अपने कर्मों से।
और वो वाक्य भी बहुत पावरफुल है जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की जरूरत बताता है।
हाँ, मनोविज्ञान आधा पकावा है। हमने मानसिक बीमारी वाला हिस्सा पका लिया है, लेकिन दूसरा पक्ष कच्चा है, ताकत का पक्ष, हम किस चीज में अच्छे हैं उसका पक्ष, जो जीवन को जीने लायक बनाता है उसका पक्ष।
ये याद दिलाता है कि इंसान सिर्फ प्रॉब्लम्स का बंडल नहीं है, उसमें बहुत पोटेंशियल भी है।
बिल्कुल।
और बिशप रॉ फॉर्मूला H=SC+V ये बार बार याद दिलाता है कि बाहरी हालात उतने मायने नहीं रखते जितना हम सोचते हैं। असली कंट्रोल हमारे हाथ में है, वी।
तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, मतलब प्रैक्टिकली क्या करें?
हाँ, सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
मेरे ख्याल से सबसे पहला कदम है अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को पहचानना। वो VI सर्वे ऑनलाइन मुफ्त में उपलब्ध है viacharacter.org पर।
अच्छा,
ये जानना कि आपकी टॉप 5 ताकतें क्या हैं, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है।
ठीक है, ताकतें पहचान ली, फिर?
फिर कोशिश करें कि जिंदगी को इन ताकतों के इर्द गिर्द डिजाइन करें।
कैसे?
जैसे काम पर सोचें, आप अपनी टॉप स्ट्रेंथ का इस्तेमाल रोज कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले सकते हैं जो आपकी जिज्ञासा को जगाता हो या जिसमें आपकी क्रिएटिविटी लगे? रिश्तों में अपने पार्टनर, दोस्तों या परिवार वालों की कमियों पर फोकस करने के बजाय उनकी ताकतों पर ध्यान दें, उनकी तारीफ करें। ऐसी एक्टिविटीज प्लान करें जहां आप साथ मिलकर अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर सकें।
और बच्चों के साथ भी यही?
हाँ, उनकी गलतियों को सुधारें जरूर, पर उनकी अच्छाइयों और जो ताकतें उनमें दिख रही हैं उन्हें भी पहचानें और सराहें।
ठीक है, ये तो हुआ ताकतों को इस्तेमाल करना। और भावनात्मक नजरिए को बेहतर बनाने के लिए?
उसके लिए भी कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास है, जैसे कृतज्ञता। रोज रात सोने से पहले दिन की 3 अच्छी चीजें लिखें और सोचें कि वो क्यों हुई।
3 good things exercise।
हाँ, या हफ्ते में एक बार किसी के लिए आभार व्यक्त करें, चाहें तो लिखकर या सीधे बोलकर।
और आशावाद के लिए?
जब कोई मुश्किल आए तो वो ABCD मॉडल इस्तेमाल करें। अपने नेगेटिव विचारों को चैलेंज करें, पूछें, क्या ये सचमुच इतना बुरा है? क्या इसके बारे में मेरा सोचना ही इसे बुरा बना रहा है? क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? मैंने पहले ऐसी मुश्किलों का सामना कैसे किया था?
अपने विचारों पर सवाल उठाना।
हाँ, और वर्तमान का आनंद लेना, जिसे सेवरिंग कहते हैं। जब कुछ अच्छा हो रहा हो तो बस उसे पूरी तरह महसूस करें। अपनी इंद्रियों पर ध्यान दें, क्या दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, क्या स्वाद या गंध है।
छोटे छोटे पलों का भी पूरा मजा लेना।
हाँ, और सुख के साथ साथ संतोष देने वाली गतिविधियों के लिए भी समय निकालें, जिनमें आप पूरी तरह डूब सकें।
और अंत में अर्थ और उद्देश्य की तलाश।
हाँ, सोचे कि आप अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल किस तरह किसी ऐसे काम में कर सकते हैं जो आपके लिए मायने रखता हो, जो सिर्फ आपके बारे में न हो। ये कुछ भी हो सकता है, अपने मोहल्ले में कुछ सुधार करना, किसी की मदद करना, कोई नई स्किल सीखना और उसे दूसरों के साथ बांटना, किसी कॉज के लिए वॉलंटियर करना।
तो मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हो जाती है। ये एक सफर है और इस सफर के हम खुद ड्राइवर बन सकते हैं। ये जानना कि हालात का असर सिर्फ 10-15% ही है, ये वाकई बहुत हौसला देने वाली बात है।
और मेरे लिए वो सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स वाला आइडिया सबसे खास रहा। अपनी कमजोरियों पर अटके रहने के बजाय अपनी ताकतों पर ध्यान देना और उन्हें इस्तेमाल करना, ये जिंदगी को देखने का एक ज्यादा पॉजिटिव और शायद ज्यादा असरदार तरीका लगता है। ये सोचना कि हम एक्टिवली अपनी खुशी को बना सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत उम्मीद जगाने वाला विकार है।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ के जाते हैं आज। अगर कोई व्यक्ति सचेत रूप से अपनी शीर्ष शक्तियों को पहचाने और अगले सिर्फ एक हफ्ते तक हर दिन उन्हें अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों या मौकों का सामना करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो उनके अनुभव और नजरिए में क्या बदलाव आ सकता है?
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।